मेरी जाने की बहुत सी रोशनी देखी जगत में, मेरी जाने की बहुत सी रोशनी देखी तेरे दरे पार सी उज्जवल नहीं आभा कहीं देखी तेरे दरे बार सी उज्जवल नहीं आभा कहीं देखी। वितराग सत्पुरुष और उनकी आगमवाणी का शरणा हम सबको प्राप्त हो। आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव को भावमय वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जिन्होंने भी इस जगत में सत्य को खोजा, शांति को खोजा, उन्हें एक बात जरूर समझ में आई कि ये सत्य और शांति आत्म सुधार से ही मिल सकती है, पर सुधार की उम्मीद छोड़ने पर ही घटित हो सकती है। जब तक किसी और को सुधारने की कामना है, तब तक हमारी सारी भाव गति पर पाषंड मार्ग पर है, पर मार्ग पर है, और यह विभाव गति है। और इस विभाव गति का परिणाम सबको दुख रूप में मिलता है अथवा द्वंद के रूप में मिलता है। द्वंद कैसा? अंदर में परेशान रहता आदमी, हर वक्त उसका दिमाग विश्लेषण करता रहता है, किसी के भी व्यवहार का विश्लेषण करता रहता है। कोई हमारे प्रति अच्छा करे ना, तब भी मन सशंकित होता है, सोचता है ये मुझसे इतना मीठा क्यों बोल रहा है, आज इसको मुझसे क्या चाहिए, ये आदमी मुझसे क्यों जुड़ना चाहता है। जरूर इसका कोई लालच होगा, कोई स्वार्थ होगा, अथवा इसको मेरी कोई चीज पसंद आ गई होगी, अथवा आज इसको कोई टाइम पास करने के लिए मिला नहीं होगा इसलिए मुझसे बातें कर रहा होगा। नहीं, किसी का अच्छा व्यवहार भी हमारे अंदर शंका पैदा करवाता है, और बुरा व्यवहार तो खैर सवाल पैदा करवाता ही है कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे बारे में ऐसा कह दिया गया, मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया गया। हमारा दिमाग वो दूसरों की व्याख्याओं में दिन रात उलझा रहता है, और जब तक ये दृष्टि पर पे घूमती रहती है, तब तक हमें सुख शांति नहीं हासिल हो सकती। सुख शांति उसी को हासिल हुई है जिन्होंने पर की परवाह करना छोड़ दिया, कम कर दिया या छोड़ दिया, उसी को सुख शांति हासिल हुई। पर की परवाह करने का मतलब यह नहीं है कि हम लापरवाह हो जाए, बेभान हो जाए, अहंकारी हो जाए, हठी हो जाए, मदहोश हो जाए और ऐसा सोचे कि भैया जमाने का क्या सोचना, ये दुनिया वाले कहते ही रहेंगे, अथवा जैसे जवान लोग बोलते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या, इस तरह से पर की परवाह छोड़ने की बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि वो जो लापरवाह होते हैं वे भी अपने इच्छाओं के तो वशीभूत ही रहते हैं और तब भी दूसरों से संबंध जोड़ने की चिंता में ही लगे रहते हैं। हाँ, वे जिनको पसंद करते हैं उनकी परवाह करते हैं, जिनको ना पसंद करते उनकी परवाह नहीं करते। और ये पसंद और नापसंद के बीच में लगभग हम सभी जीते, और ये कारण है कि हम सारे लोगों के दिमाग में द्वंद्व चलता रहता है, दुख पैदा होता रहता है, चिंता बनी रहती है। और चिंता तब तक रहेगी जब तक पसंद की पकड़ है, पसंदीदा व्यक्ति, पसंदीदा खाना पीना, पसंदीदा वातावरण, जब तक इसकी पकड़ है और नापसंद से दूर भागते हैं तब तक कहीं ना कहीं आदमी का दिमाग अशांत रहेगा, चिंता रहेगी, वो मस्त नहीं हो सकेगा। मस्त होना है और सदा मस्त रहना है तो विवेक पूर्वक पर से नाता छोड़ना होगा। लेकिन वो कब संभव है? क्योंकि पर से नाता छोड़ो भी घटाओ भी तो आखिर आदमी कुछ तो सोचेगा, कुछ तो करेगा, वो क्या होगा? कुछ तो जिएगा, वो क्या होगा? यहां पे दो बातें समझने की है कि अगर हम पर की चिंता न करें, हम पर की व्याख्याएं ना करें, तब भी हमारा दिमाग कुछ तो सोचेगा। वो क्या सोचे? वह ये सोचे कि जो भी मेरे सामने आया है, जो भी मेरे साथ है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ एकदम बढ़िया है। ये दिन अच्छा, ये लोग अच्छे, ये माहौल अच्छा, ये घटनाएं अच्छी, ये सब मेरे भले के लिए। कुछ तो सोचोगे ना, तो हर घटना में ये सोचो, ये जो हुआ बढ़िया हुआ, अच्छा हो रहा है। जो व्यक्ति आया है बढ़िया आया, वो व्यक्ति आपके और हमारी जिंदगी में जो भी आया है, व्यक्ति आया है, घटना आई है, सुख दुख आया है, संयोग वियोग आया है, सर्दी गर्मी आई है, ये सब चीजें हमारे दिमाग में चिंता तनाव दुख पैदा करने की बजाय ये पैदा करवा सकती है। बढ़िया तो है, इसमें से कुछ अच्छाई जरूर है, मैं उस अच्छाई को देखूं, उस अच्छाई को खोजूं। हर बुरी से बुरी घटना जिसको लोग बुरी कह रहे हैं, आप उसमें से अच्छाई को खोजना स्टार्ट कर दो तो पता क्या होगा, हमारी दृष्टि धीरे धीरे दुख से बाहर हटने लगेगी, चिंता से बाहर आने लगेगी, और तब हमारे चारों ओर के माहौल में हल्का फुल्का पना होगा, प्रसन्नता होगी, प्रेम हो सकेगा। अन्यथा हम सब लोग प्रेम को तलाशते हैं, शांति को तलाशते हैं, सुखों को तलाशते हैं, लेकिन कहाँ तलाशते? पसंदीदा खाने में, पसंदीदा लोगों में, पसंदीदा माहौल में, और वे पसंदीदा चीजों के पाने की प्रतीक्षा में हम लोग कितना दुख उठाते, और फिर जब ये पसंदीदा मिल जाती है तब भी ठीक वैसी तो नहीं होती जैसी हमारी चाहते होती है, सामने वाले की भी अपनी चाहते होती है, और फिर लड़ाई झगड़ा प्रारंभ भी रहता है, और फिर जो मिल जाता है वो छूट भी तो जाता है, फिर आदमी दुख में चला जाता है। हमेशा कैसे मस्त रह सकते हैं, इसके लिए एक पॉइंट सीख है कि जो भी माहौल हमें मिल रहा है हम इसकी विवेचना करने की बजाय इसमें कुछ अच्छा ही है ऐसा ही ग्रहण करें, कुछ अच्छे के लिए ही मिला है, इसको इस तरह से लेना स्टार्ट करें। इससे हम कुछ सीख सकते हैं, हम घटनाओं से सीख सकते हैं। बिजनेस अच्छा चल रहा है तब तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बिजनेस जब लॉस में हो तब भी बहुत कुछ सीख सकते हो। बेटा कहना मान रहा है तब तो आपको कुछ सीखने की ज्यादा शायद मौका ना मिले, जब आपका बेटा आपकी सुन ही नहीं रहा है तब भी आप कुछ सीख सकते हो, उस बेटे के व्यवहार से सीख सकते हो, उसकी वाणी से सीख सकते हो, वो जो बुरा व्यवहार करता है उससे सीखो कि बुरा व्यवहार ऐसे क्यों करता है, मैंने कब ऐसा किसी के साथ किया था, ये ऐसा बोला तो ऐसे शब्द मेरे भीतर में कभी कहाँ रहे थे जो ये शब्द मुझे वापस सुनने को मिले। उस घटना से भी सीख सकते हम। जो लोग घटनाओं से सीख लेते हैं उन्हें स्वाध्याय करना आता है। घटनाओं से सीख लेना सीखो। जब कोई हमारे सामने ताना मारता है, हमारे को अपमानित करता है, पीड़ित करता है, उन घटनाओं में भी कुछ अच्छा है, उसको सीखो। क्या अच्छा है इस घटना में? देखो, जब बेटे ने पिता में गुस्सा किया और कहा आपको अकल नहीं है, कैसे बिजनेस करते हो, इतना बड़ा लॉस कर बैठे। बापू को बहुत बुरा लगा कि कभी बड़ों का नहीं सुना, अब देखो बच्चे का सुनना पड़ रहा है। लेकिन वही बापू शांति से सोचे, इसमें कुछ तो अच्छा है। क्या अच्छा है सोचूं जरा मैं? वो सोचेगा तो उसको समझ आएगा कि सबसे अच्छी बात तो यह है कि मेरा बेटा मेरे साथ है। तभी बोल रहा है ना, नहीं साथ होता तो बोलते ही कहाँ। सेकंड बात कि मेरा बेटा मेरे प्रति भी हमेशा एक बेस्ट आदमी होने की उम्मीद करता है, एक सक्सेसफुल आदमी होने की उम्मीद करता है, और मेरा बेटा मुझसे कुछ अच्छा करवाना चाहता है। जब अच्छा निकलवाना चाहता है तो मैं कहाँ गलत कर बैठा, चूका कहाँ? फिर बेटे ने गलती बताई। ऊपर से आप कहते होंगे बिल्कुल गलत है, तू ठीक नहीं कह रहा, लेकिन अंदर से सोचना कि नहीं वो ठीक कह रहा है। कैसे ठीक कह रहा है खोजना, तो पता लगेगा ओ वो ये बात है, इस अपेक्षा से ठीक ही तो बोल रहा था। और जब पता लगेगी ना तो मन से बेटे को थैंक यू बोलना और कहना बहुत अच्छा हुआ कि जो मुझे प्यार करता है वो मुझे सुधारना चाहता है, वो मुझे परफेक्ट देखना चाहता है। इससे बुरा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ अच्छा ही हुआ है। ऐसा देख पाना। हम जानते हैं कि हमारी दृष्टि कभी ऐसी ट्रेंड नहीं हुई, हमारी नज़रें हमेशा ऐसी ट्रेंड हुई है कि हम बोले तो सामने वाला माने और सामने वाला बोले तो हम उसमें कमियां निकालें। आज दिन तक हम सब ऐसे ही तो करते आए। जब टीचर डांटता था हम कहते थे हाँ हाँ क्यों डांट रहे हो, मुझे पता है आपको वो स्टूडेंट अच्छा लगता है, मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, क्योंकि वो उसके पापा बहुत रिच है अथवा उसके पापा आपके पड़ोस में रहते हैं अथवा वो स्टूडेंट आपके घर में ट्यूशन लेने आता है, इसलिए मुझे पता है आप मुझे क्यों डांट रहे हो। मतलब हमने टीचर की डांट में भी हमेशा टीचर की बुराई देखी, मार्क्स अपने कम आए तो भी एग्जामिनर की बुराई देखी, बीमार पड़ गए तो भी खाने में बुराई देखी या मौसम में बुराई देखी। आज दिन तक हम सब ट्रेंड ऐसे किए गए हैं कि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो सामने वाले में गलती होती है। बचपन से अब देखो ना, आजकल घरों में रिश्ते बड़े टूट जाते हैं, वो बड़ी मुश्किल से तो बच्चों की शादियां होती है और कुछ समय बाद तलाक हो जाते हैं। और जब तलाक हो जाता है तब दोनों पक्षों की बातें सुनो निष्पक्ष होकर के, बड़ी हैरानी होगी। लड़की वाले कहेंगे कि लड़के वाले गलत मिल गए थे, ऐसे निकलेंगे सोचा ही नहीं था, फलाने ऐसा बोला ऐसा किया ऐसा दिखलाया जबकि ऐसा था नहीं। ठीक है, अब दूसरे पक्ष को सुनो जरा, वो भी सेम इसी तरह के डायलॉग्स बोल रहे होंगे, कहेंगे कि हमारी बेटी बिल्कुल सही थी, वो सामने वाले गलत निकला, वो ऐसा हुआ वो वैसा हुआ। मतलब हर पक्ष वाला व्यक्ति हमेशा दूसरे पक्ष वाले व्यक्ति को गलत साबित कर रहा होगा। अब इस सब घटनाओं को हम सारे लोग रोज गुजर रहे ऐसी घटनाओं से, लेकिन इसे हटना कैसे, इनको बदलना कैसे, ये हमें नहीं आता। तब हम एक सेंटेंस बोलते हैं कि भैया इसके कर्मों में ऐसे ही लिखा था, कर्मों का दोष है, कोई कुछ कर भी नहीं सकता। हम लोग कर्मों का दोष है ऐसा कह करके निश्चिंत हो जाना चाहते, बचना चाहते, लेकिन हकीकत यह है कि दृष्टि का दोष है, नजरिए का दोष है। और ये नजरिए में क्या गलती है कि बचपन से हमारा नजरिया ट्रेंड ऐसा हुआ ही नहीं कि हमें हर घटनाओं में अच्छा ही लेना आए। एक जिसको शादी हुए अभी 2-3 साल ही हुए, वो बहन कह रही थी कि महाराज साहब कैसे हमारे घर के अंदर माहौल, पापा का इतना सोशल स्टेटस है, इतना ज़्यादा उनके रिलेशंस है कि आए दिन घर में मेहमान आते रहते हैं। अब मेरी मम्मी सास माँ घर में रहे तब तो मैनेज हो जाता है, लेकिन मम्मी भी नहीं, इतने मेहमान भी आ गए, साधु संत भी आ गए, मेरी तो पूरी कमर ही टूट गई, इतना काम करना पड़ा ये वो। हमने कहा तो इसमें बुरा क्या हुआ, बोले बुरा नहीं हुआ, पापा को क्या पता लगता है कि मैं कितनी बीमार हूँ और कितना सारा काम मुझे अकेले को करना पड़ रहा है। मैंने कहा इसमें बुरा क्या हुआ ये बता पहले। बोले काम थोड़ी होता है इतना। मैंने कहा अच्छा हुआ ना तुझे काम करने की प्रेरणा मिली, तो रस्ते में ना और डेवलप हुआ, तू और अच्छे से काम कर पाएगी और कल को जब तू समाज में जुड़ेगी लोग तेरे को भी जानेंगे, तेरे काम को सराहेंगे और तुझे इतने सारे लोगों की तारीफ मिलेगी, सहयोग मिलेगा, तू जिंदगी में कभी अकेलेपन से बोरियत नहीं पाएगी। बहुत कुछ अच्छा हुआ इन सब घटनाओं से कि तेरी सास की तो पहचान पूरी बनी चुकी थी, आज तूने इतना काम किया तो तेरी भी पहचान बनी है, अच्छा देखना। वो बोले लेकिन ऐसा तो मैं देख ही नहीं सकती, मुझे तो ये लगता है कि मेरी तबीयत खराब कर डाली इतने सारे मेहमानों ने आकर के। एक एग्जाम्पल है ये, हम सारे लोगों को हर घटनाओं में ऐसा देखना तो आता है, अरे मुझे तंग कर दिया, परेशान कर दिया, बड़ा टेंशन हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, लेकिन हमने कभी अपनी दृष्टि को ऐसे ट्रेन ही नहीं किया कि हम ऐसा देखें बहुत अच्छा हो, इन घटनाओं में अच्छाई को सोच सके, अच्छाई को समझ सके। जो ऐसा कर पाता है वह अगर दिमाग सोचता भी है तो अच्छे को सोचेगा, तो क्या होगा कि उसके जो माहौल है उस माहौल के अंदर से गर्मी सिरदर्दी खत्म होती जाएगी और हम अपने वातावरण में सहयोगी बनेंगे। तो सेकंड पॉइंट पैदा होगा कि वातावरण भी सदा हमको सहयोग देने वाला मिला करेगा। हम प्रेजेंट वातावरण की इतनी हिंसा कर डालते हैं, इतना उसको कष्ट दे देते हैं, इतना उसको कष्टप्रद बना डालते हैं कि अगर हमारे किस्मत में अभी कष्ट ना भी हो तो नए कष्टों की रचना हम कर लेते हैं। क्योंकि जिसको जो मिला है वो अपने वातावरण में हमेशा कमियां देखता रहता है, भारी बना रहता है, और भारी बना हुआ व्यक्ति पूरे माहौल को भारी बना देता है, बोझिल बना देता है। बात कुछ हो या ना हो लेकिन बोझ लेने की आदत जिसको हो गई है वो पूरे माहौल को खराब कर डालता है, बोझिल बना देता है। और फिर उसका परिणाम क्या होता है कि जिसको बोझ लेने की आदत पड़ गई है प्रकृति में उसको और ज़्यादा बोझ दिया जाता है, फिर उसके साथ घटना ऐसी घटती है कि बेचारा बार बार बोझ ही उठाता रहता है, बार बार दुख उठाता रहता है। इसीलिए इस दिमाग की सोच को, इस देखने की नज़रिए को हमें कैसे बदलना है, तो एक पॉइंट अपने अंदर उतारे कि हर घटनाओं में ये अच्छा ही हुआ, इसमें कुछ तो अच्छा ही है, इससे कुछ तो मुझे सीखने को मिलेगा। इस तरह से देखो और अपने वातावरण के सहयोगी बनना सीखो, अपने उपलब्ध माहौल में शिकायती ना बने हम, तो हम अपने ऊपर बहुत बड़ी कृपा करेंगे। किसी और पे तो करेंगे या नहीं करेंगे, खुद के ऊपर बड़ी कृपा करेंगे अगर हम उपलब्ध माहौल में शिकायती ना बने तो। जैसे शिकायत करने की आदत घटेगी हटेगी वैसे ही देखो कि हमारे अंदर के ऑटोमेटिकली सारे अशुभ कर्म शुभ में बदलते चले जाएंगे। और हम इंसान अपने कर्मों को बदल सकते हैं, ये हमारी किस्मत है, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे को जीवन में मिला इतना अच्छा अवसर है कि हम लोग अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तो फिर क्यों ना बदलें, अभी से ही थोड़ा सा पराक्रम करें, थोड़ा सा पुरुषार्थ जगाएं कि हम अपने माहौल में हल्का फुल्का पन बनाए रखें, प्रसन्नता बनाए रखें, किसी भी बात को लेकर के बोझिल बनो ही मत। बहुत बड़ी घटना घट जाए तब भी यही बोलो इसमें भी कुछ अच्छा है, कोई मुझे सिखा रहा है इसमें भी कुछ अच्छा है। जो अच्छा देख पाएगा उसके साथ ही अच्छा होता रहेगा, जो अच्छा देख नहीं पाएगा वो हर अच्छे माहौल में भी बुरे को ही प्राप्त करता चला जाएगा। तो छोटा सा पुरुषार्थ सतत करे तो बड़ी बात, सतत करे तो बड़ी बात, वरना कभी कभार तो हम सब लोग अच्छा सोच लेते हैं पर हर दिन अच्छा नहीं सोच पाते, और किन्हीं किन्हीं घटनाओं में तो शायद अच्छा सोच लेते हैं फिर हर एक घटना में अच्छा नहीं सोच पाते हैं। तो क्यों ना हम इसको बदलने के लिए हर एक आदमी को अपने आप का रोज निरीक्षण करना होगा, रोज निरीक्षण करना होगा। थोड़ा सा अभ्यास करें कि दिन में कभी भी फुर्सत मिले 10-15 मिनट करके बैठे और खुद से बात करें और खुद से पूछे कि मैं अपने उपलब्ध माहौल में वातावरण में खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, शिकायत मुक्त हूँ, और क्या मेरी वजह से मेरे माहौल के अन्य लोग प्रसन्न हैं। बस ये एक सवाल डालो, एक महीने तक इस पे काम करो, एक महीने तक। आप एक महीने में बदल जाओगे। एक महीने तक अभ्यास करना कि मैं अपने वातावरण में शिकायत मुक्त हूँ, बोझ मुक्त हूँ, हर घटना में रही हुई अच्छाई को देख पा रहा हूँ। खुद से सवाल करना, और मेरी वजह से मेरे माहौल में कोई बोझिल तो नहीं है, कोई भारी तो नहीं है। इतना सा सवाल, एक महीने का अभ्यास अगर हम करें तो हमारा माहौल भी बदलेगा, हमारा नजरिया भी बदलेगा, और हमारे पाप कर्म भी पुण्य कर्म में ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है तो फिर क्यों ना हो, अभी से थोड़ा सा पुरुषार्थ शुरू करें ना। जय हो।